खान साहब, क्या अच्छी बात और क्या मिलाद की बात, खूबसूरत बात, आप फरमाइए।
हजरत ने कहा कि अगर 500 फिका का मिलाप हो जाए,
नहीं वो दूसरी बात है, पहली बात ये कि क्या उबारक बात, हम एक से ज्यादा इमामों के मुकल्लिद हो सकते हैं, उनकी बातें ले सकते हैं।
मुत्तबे किताब सुन्नत के लिए किसी के दुरुस्त कौल को लेने में कोई कबाहत नहीं है, वो चाहे सही बात इमाम जाफर सादिक की हो, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल या इमाम सुफयान सौरी, फुकहा उम्मत की तादाद 4-5 नहीं, 10-20 नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों की तादाद में, और आज भी कयामत तक ये दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन बुनियादी बात यह है, जैसे मैं अल्लामा साहब से पूछूंगा, अभी आपने कहा कि हम इस बात की इजाजत देते हैं, गुंजाइश रखते हैं कि दूसरे अइम्मा के इश्तिहाद को कबूल कर लें, तो क्या आप अपनी इस निस्बत को छोड़ सकते हैं? तकलीद का बुनियादी फर्क ये है, नुकसान ये है कि अपनी इस निस्बत को हम नहीं छोड़ पा रहे हैं।
नहीं, दूसरी बात है
जिसकी
बुनियादी साहब,
लेकिन मेरा ख्याल है कि बहुत सी बातें बिल्कुल एक लिटरलिस्ट अप्रोच से पैदा हो रही है। मेरी राय में मुझे मौलाना की इस बात से मतलब ऐसा इख्तिलाफ है जिसको मैं कह सकता हूँ कुल्ली इख्तिलाफ। निस्बत और तकलीद में फर्क है। निस्बत जो है वो एक तहजीबी कदर के तौर पर जारी रह सकती है, एक दबिस्तान की तश्कील में काम आती है, एक दबिस्तान का उन्वान होता है जिसके तमाम अफराद लाजिम नहीं है कि एक दूसरे से तकलीद और उसका ताल्लुक रखते हैं। मतलब मानो अबू हनीफा की नस्बत से अगर फिक्र हनफी है तो ये बात जाहिर है कि आप मुझसे कहीं ज्यादा जानते होंगे कि फिक्र हनफी की तामीर में मानो अबू हनीफा से ज्यादा उनके शागिर्दों का किरदार है जो उनकी मुखालफत पे खड़े होंगे। इसी तरह बाकी फिक्रों में भी होगा हमारा ख्याल है। तो तकलीद अगर मैं अपने आप को हनफी कहता हूं और मैं सरदस्त इस बात पर मायल नहीं हो सकता कि मैं अपने आप को हनफी ना कहूं, तो मैं हनफी कहता हूं तो इसमें मेरे लिए वो एक नस्बत है जिसका जोर दीनी से ज्यादा तहजीबी है कि मैं अपने उस्तादों के नाम को, ये जावेद अहमद गांधी साहब हैं, ये अपने आप को कहते हैं दबस्तान फर्राही का हूं। इनसे पूछिए कि मौलाना फर्राही से कितनी बातों में मुखालिफ इख्तलाफ रखते हैं। लेकिन अपनी इस नस्बत का इंकता ये गवारा नहीं करेंगे। ये अपने उस्ताद का नाम इस तरह लिखते हैं कि जैसे कोई इंतहाई मुतर जो है वो अपने मुरीद का नाम लिखता है, और 200 से ज्यादा मकाम पे इनके इख्तलाफ मुझे मालूम है उनकी एक तफसीर में। तो ये नहीं, फिर इंसानियत में कमी कर देंगे आप।
अगर असल में वजूद पजीर होती है जैसे कि अहमद जावेद साहब ने फरमाया, वो एक तारीख उसके पीछे होती है, और ये बिल्कुल मुमकिन है कि मैं अपने असाजा की तरफ अपने आपको नस्बत दूं, मैं किसी खास टुटका नगर की तरफ दूं, मैं किसी दबिस्तान से वाबस्ता हूं। असल चीज ये मेरा रवैया क्या है
जी,
असल आप मेरे सामने लाकर रखते हैं एक बात, आप कहते हैं कि देखिए जी ये फला जलील कबर आलम ने जो फला अकीदे की ताबीर की है ये कुरान के खिलाफ है। मैं आपकी बात को सुनता हूं, उसके बराबर आपसे मालूम करता हूँ, बात कभी होती है तो कबूल करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैं ये कर रहा हूँ तो मैं मुकल्लिद नहीं हूँ
बस,
और कोई भी मुकल्लिद नहीं।
बिल्कुल सही,
ये खराबियों को हम मुतय्यन कर ले वो क्या है, होता ये है कि जब आप खराबियों से ऊपर उठकर मुजर्रात में बात करते हैं तो बाद वक्त बात बहुत खराब हो जाती है। खराबियां ये है कि एक आम आदमी हमारे पास आया है, उसने आके हमसे पूछा कि फला मसले में क्या राय है, जाहिर है कि वो हमारी राय रंगीन दे गई, वो खामोशी से चला गया, कोई कायमत नहीं आ गई, उसने कोई दलील नहीं पूछी, तब भी कोई हादसा नहीं हुआ। इसलिए कि लोग इतमाद करते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, नुस्खा लिखवाते हैं, हर चीज की दलील पूछते हैं, लेकिन अगर उस आदमी ने पूछ लिया हमसे कि ये बात आप कहां से कह रहे हैं, उसके बाद हमारा जवाब क्या है? एक जवाब ये है कि तुमको ये पूछने का हक नहीं है, ये मुकल्लदाना जहनीत से पैदा हुआ है। एक ये है कि हम उसको ये कहते हैं कि भाई बैठ जाओ, जितनी इस्तेबात तुमने है हम तुम्हें समझाने की कोशिश करते हैं, ये बात कुरान में ऐसे बयान हुई है, हदीस में ऐसे बयान हुई है, अगर हमने ये रवैया अख्तियार किया तो कोई खराबी पैदा नहीं, उस आदमी की तालीम होगी, उसकी तरबियत होगी, और अगर हम उसको ये भी साफ कह देते हैं कि ये देखो ये हमने अपनी बात तुम्हें समझा दी है, हमें इस पर इत्मीनान है, किसी और साहिब इलम के पास तुम चले जाओ, उससे भी अपना इत्मीनान कर
उसे की बड़ी अच्छी बंदी होगी
खबर पैदा कर दी। इसी तरीके से दूसरी खराबी मैंने आपसे अर्ज किया वो ये है कि जब एक आलम से गुफ्तगू हो रही होती है, जिन्हें वो कबर आलम है अपने मकम फिक्र में उसकी बड़ी हैसियत है, आप उससे ये कहते हैं कि देखिए आपकी ये बात हमारी समझ में नहीं आ रही, अब ये गुफ्तगू किसी आलमी में नहीं हो रही, एक आलम दूसरे आलम से बात कर रहा है, وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں, آئیے مذاکرہ کرتے ہیں, آئیے بات کرتے ہیں. اس کے بعد وہ ساری زندگی حنفی رہا, ساری زندگی شافعی رہا, کوئی قیامت نہیں آئی. لیکن انہوں نے یہ کہتا ہے کہ آپ نے جو کرنا تھا کہہ لیا, ہمارا امام تو یہ کہتا ہے. اس کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ کوئی حیثیت رسول اللہ کی ہو سکتی ہے.
اور غالب صاحب خرابی ہے یہ کہ شاید محقق کی بات محقق کے لیے ہوتی ہے,
پتنے کے پیچھے ایک مسئلے کے پیچھے پوری تحقیق ہوتی ہے. اب میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں, جیسے غالب صاحب نے کہا بات وہی پر آ رہی ہے کہ جو عام آدمی آتا ہے وہ جو ایک مسئلہ پوچھ رہا ہے, میں نے اس کو اس کا مسئلہ کا حل بتا دیا. اچھا اس کو تو اتنا سا جواب مل گیا کہ اس روزے میں اس مسئلے میں میں کیا کروں, لیکن یہ جو فتویٰ دینے والا ہے یہ پوری تحقیق اس کو تھوڑی بٹھا کے بتائے گا. میں نے اس کو کتنا
سے قبول کرنا ہے,
اسے قبول کرنا ہے. لیکن اگر وہ پوچھتا ہے تو اس کے دیکھیں نا اس کے بساط پر کتنے اس کے عقل ہے, اس کے عقل کے مطابق تمام کرو اس کی عقل, اس کو اتنی دلیل دی جائے گی تاکہ وہ سمجھے. اور اگر اس میں بات سلا لیتے تو وہ خود نکل کے آئے گا.